नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एडम टूज की क्रैश समकालीन आर्थिक इतिहास और वैश्विक राजनीति का विस्तृत विश्लेषण है। यह पुस्तक 2007 से शुरू हुए वित्तीय संकट को केवल अमेरिकी आवास बाजार या वॉल स्ट्रीट की विफलता नहीं मानती, इसके बजाय यह दिखाती है कि डॉलर आधारित वित्त, यूरोपीय बैंकों, केंद्रीय बैंकों और सरकारों के फैसलों ने किस तरह एक स्थानीय दिखने वाले झटके को विश्वव्यापी संकट में बदला। टूज संकट की दीर्घ पृष्ठभूमि, 2008 के बैंकिंग पतन, यूरोजोन ऋण संकट और उसके बाद उभरे राजनीतिक असंतोष को एक ही क्रम में रखते हैं। पुस्तक का उद्देश्य घटनाओं की सूची देना नहीं, बल्कि शक्ति, धन और जोखिम के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझाना है। इसमें अमेरिका, यूरोप, चीन और रूस की भूमिकाएं जुड़ती हैं, साथ ही ब्रेग्जिट, डोनाल्ड ट्रंप के उभार और क्रीमिया जैसे परिणामों की आर्थिक पृष्ठभूमि भी सामने आती है। लगभग एक दशक को समेटती यह पुस्तक जटिल वित्तीय तंत्र को राजनीतिक परिणामों से जोड़ने वाली गंभीर, शोधपरक और व्यापक कृति है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, अमेरिकी आवाज बुलबुले से वैश्विक बैंकिंग संकट तक का जोखिम तंत्र। पुस्तक का आरंभिक तर्क यह है कि 2008 का संकट अचानक हुई दुर्घटना नहीं था। अमेरिकी ऋण बाजारों के लंबे समय के विनियमन हटाने, आवास मूल्यों में तेज वृद्धि और अधिक जोखिम वाले उधार के विस्तार ने इसकी जमीन बनाई। सब प्राइम बंधक ऐसे उधारकर्ताओं को दिए गए जिनकी भुगतान क्षमता अनिश्चित थी। समस्या केवल इन ऋणों के खराब होने की नहीं थी, इन बंधकों को प्रतिभूतियों के रूप में पैक करके वित्तीय बाजारों में व्यापक रूप से बेचा गया, जिससे जोखिम मूल ऋणदाता के पास सीमित नहीं रहा। जब घरों की कीमतें गिरने लगीं और चूक बढ़ी, तब इन उत्पादों का मूल्यांकन अविश्वसनीय हो गया। बैंकों को यह पता नहीं था कि दूसरे संस्थानों की बैलेंस शीट में कितना नुकसान छिपा है। परिणाम स्वरूप आपसी उधार का बाजार जाम हुआ और तरलता की कमी ने साख के संकट का रूप ले लिया। टूज का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वित्तीय नवाचार ने जोखिम को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे कम दिखाई देने वाला और अधिक फैला हुआ बनाया। इसीलिए आवास बाजार की कमजोरी जल्दी ही निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय ऋण बाजारों की समस्या बन गई। यह विश्लेषण बताता है कि जटिल वित्तीय उत्पादों को समझे बिना संकट के कारणों को केवल लालच या खराब नियमन तक सीमित करना अधूरा है। दूसरा, डॉलर प्रणाली और फेडरल रिजर्व की वैश्विक निर्णायक भूमिका। क्रैश की विशिष्ट उपलब्धि यह स्पष्ट करना है कि संकट के समय अमेरिकी फेडरल रिजर्व की भूमिका केवल अमेरिका तक सीमित नहीं थी। विश्व के अनेक बैंक डॉलर में उधार लेते, डॉलर परिसंपत्तियां रखते और डॉलर आधारित बाजारों पर निर्भर थे। इसलिए जब डॉलर फंडिंग सूखने लगी, यूरोपीय बैंकों समेत कई विदेशी संस्थानों पर गंभीर दबाव पड़ा। टूज इस परस्पर निर्भरता के माध्यम से दिखाते हैं कि वित्तीय वैश्वीकरण में राष्ट्रीय सीमाएं राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहते हुए भी बैंकिंग जोखिम को रोक नहीं पाती। फेडरल रिजर्व की आपात तरलता व्यवस्थाओं और अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ स्वैप लाइनों ने डॉलर की कमी से जूझ रहे वित्तीय तंत्र को सहारा दिया। यह तथ्य अमेरिका की केंद्रीय स्थिति को रेखांकित करता है, क्योंकि वैश्विक बाजार की स्थिरता अंततः अमेरिकी केंद्रीय बैंक की क्षमता और निर्णयों पर निर्भर हो गई थी। पुस्तक इस व्यवस्था में शक्ति की असमानता भी पहचानती है। जिन संस्थानों और देशों को डॉलर तक सीधी पहुंच मिली, उनकी स्थिति अलग थी, जबकि अन्य को अधिक अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस दृष्टि से संकट मुक्त बाजार की स्वतः स्फूर्त विफलता भर नहीं था, वह ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का परीक्षण था जिसमें निजी वित्त वैश्विक था, लेकिन अंतिम बचाव की क्षमता कुछ सार्वजनिक संस्थाओं, विशेषकर फेडरल रिजर्व के हाथ में केंद्रित थी। तीसरा, यूरोजोन संकट में साझा मुद्रा और अधूरी राजनीतिक एकता की समस्या। टूज यूरोपीय संकट को अमेरिकी वित्तीय दुर्घटना के बाद की अलग कहानी नहीं मानते। यूरोपीय बैंक अमेरिकी वित्तीय बाजारों से गहराई से जुड़े थे, इसलिए 2008 के झटके ने यूरोप की अपनी कमजोरियों को उजागर किया। यूरोजोन में एक साझा मुद्रा थी, पर उसके साथ समान राजकोषीय क्षमता, बैंकिंग सुरक्षा और पूर्ण राजनीतिक एकता विकसित नहीं हुई थी। संकट बढ़ने पर सदस्य देशों की सरकारों और बैंकों के बीच जोखिम का संबंध अत्यंत खतरनाक बन गया। बैंकों की कमजोरी सरकारों पर बोझ डालती थी और सरकारी ऋण पर संदेह बैंकों की बैलेंस शीट को फिर कमजोर करता था। ग्रीस का ऋण संकट इस व्यापक संरचनात्मक तनाव का प्रमुख प्रतीक बना, लेकिन पुस्तक का दृष्टिकोण इसे केवल किसी एक देश की राजकोषीय अनुशासनहीनता से नहीं समझता। इसमें यूरोपीय बैंकों की हिस्सेदारी, ऋणदाताओं की सुरक्षा, जर्मनी की राजनीतिक प्राथमिकताएं और यूरोपीय संस्थाओं की सीमित प्रतिक्रिया क्षमता भी शामिल है। मितव्ययिता के उपायों ने कई समाजों में आर्थिक पीड़ा और राजनीतिक असंतोष बढ़ाया। इस विश्लेषण से पुस्तक का बड़ा निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रा संघ केवल तकनीकी परियोजना नहीं होता। जब आर्थिक झटका आता है तब उसके टिके रहने के लिए लोकतांत्रिक वैधता, राजकोषीय साझेदारी और संकट में निर्णायक सामूहिक कार्रवाई आवश्यक होती है। चौथा, संकट के बाद आर्थिक असुरक्षा से ब्रेग्जिट और जनवादी राजनीति तक, पुस्तक वित्तीय संकट की कहानी को 2008 पर समाप्त नहीं करती। उसका केंद्रीय आग्रह है कि बचाव नीतियों, धीमी पुनर्बहाली और मितव्ययता के सामाजिक परिणामों ने अगले दशक की राजनीति को आकार दिया। बैंकिंग तंत्र को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हस्तक्षेप आवश्यक समझा गया, किंतु आम नागरिकों के अनुभव में रोजगार की अनिश्चितता, आय ठहराव और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव अधिक प्रत्यक्ष थे। इस अंतर ने स्थापित राजनीतिक दलों और विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रति अविश्वास को बढ़ाया। टूस, ब्रेग्जिट और डोनाल्ड ट्रंप के उभार को किसी एक आर्थिक कारण से पैदा हुई घटनाएं नहीं बताते। वे आर्थिक असंतोष, राष्ट्रीय पहचान, प्रवासन संबंधी राजनीति और प्रतिनिधित्व के संकट के मेल को महत्व देते हैं। फिर भी पुस्तक यह जोर देती है कि वित्तीय संकट ने उस माहौल को तीखा किया जिसमें वैश्वीकरण और उदार राजनीतिक व्यवस्था के वादे संदिग्ध लगने लगे। इस दृष्टिकोण की उपयोगिता यह है कि यह चुनावी परिणामों को केवल सांस्कृतिक प्रतिक्रिया या केवल वर्गीय आर्थिक हित के रूप में देखने से बचाता है। आर्थिक नीति का वितरणात्मक प्रभाव राजनीतिक स्थिरता से जुड़ा होता है। यदि नुकसान व्यापक हो और सुरक्षा या जवाबदेही कमजोर दिखे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध ऐसी दिशाओं में जा सकता है जो आर्थिक संकट के मूल कारणों से भी आगे निकल जाए। अंत में वित्तीय झटकों के बीच अमेरिका, चीन और रूस की बदलती भू राजनीतिक स्थिति, क्रेस्ट का दायरा इसलिए अलग है क्योंकि यह वित्तीय संकट को भू राजनीति से अलग विषय नहीं मानती। संकट ने अमेरिका की वित्तीय केंद्रीयता को चुनौती भी दी और विडंबना से उसे प्रमाणित भी किया। अमेरिकी बाजारों से उत्पन्न उथल पुथल के बावजूद दुनिया को डॉलर तरलता और फेडरल रिजर्व की क्षमता की जरूरत पड़ी। दूसरी ओर चीन ने वैश्विक मंदी के दौरान बड़े घरेलू प्रोत्साहन और निवेश के माध्यम से अपनी आर्थिक भूमिका को अधिक प्रभावशाली बनाया। रूस चीन को केवल उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि विश्व मांग, पूंजी और शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाले निर्णायक कारक के रूप में रखते हैं। रूस के संदर्भ में पुस्तक आर्थिक दबावों, ऊर्जा राजनीति और पश्चिम के साथ टकराव की पृष्ठभूमि में क्रीमिया के विलय सहित घटनाओं को देखती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वित्तीय संकट हर भू राजनीतिक निर्णय का प्रत्यक्ष कारण था, बल्कि तर्क यह है कि संकट ने संसाधनों, गठबंधनों, घरेलू वैधता और पश्चिमी नेतृत्व की विश्वसनीयता के बारे में धारणाएं बदली। इस व्यापक फ्रेम में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था केवल व्यापार और वृद्धि का क्षेत्र नहीं रहती, वह सुरक्षा, रणनीति और राजनीतिक प्रभाव का आधार बन जाती है। पाठक समझता है कि किसी बड़े वित्तीय संकट का प्रभाव ब्याज दरों और बैंक खातों से आगे जाकर राष्ट्रों की विकल्प क्षमता तथा वैश्विक व्यवस्था की दिशा तक पहुंचता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो 2008 के संकट को समझना चाहते हैं, लेकिन केवल अमेरिकी बैंकों के पतन की परिचित कथा से संतुष्ट नहीं है। अर्थशास्त्र, इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक नीति और वित्त से जुड़े विद्यार्थी तथा पेशेवर इसमें व्यापक संदर्भ पाएंगे। सामान्य गंभीर पाठक के लिए भी इसका लाभ यह है कि यह बैंकिंग, ऋण, तरलता और केंद्रीय बैंक जैसी जटिल अवधारणाओं को उनके वास्तविक राजनीतिक प्रभावों से जोड़ती है। पाठक यह समझ सकता है कि वित्तीय बाजारों के निर्णय रोजमर्रा की असुरक्षा, सरकारी विकल्पों और लोकतांत्रिक विश्वास को कैसे प्रभावित करते हैं। क्रेस्ट समान विषय की अनेक पुस्तकों से इसलिए अलग है कि यह संकट को किसी एक देश, एक संस्था या एक निर्णायक सप्ताह तक सीमित नहीं करती। यह अमेरिकी आवास और बैंकिंग संकट, डॉलर की वैश्विक भूमिका, यूरोजोन की संस्थागत कमियां, चीन की बढ़ती क्षमता और पश्चिमी राजनीति में असंतोष को एक परस्पर जुड़ी हुई कहानी में रखती है। इसका पैमाना और विवरण इसे मांगपूर्ण पाठ बनाते हैं, इसलिए त्वरित परिचय चाहने वालों के लिए यह हल्की पुस्तक नहीं है, लेकिन यही विस्तार इसकी बौद्धिक शक्ति है। हंस बीछरी पूरे को ना पुगे अलवानी खरी चल हो या सखेर और यार बार्यकार। टूस, आसान नैतिक निष्कर्ष देने के बजाय दिखाते हैं कि संकट प्रबंधन में बचाव, असमानता, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच कठिन समझौते होते हैं। हाल की विश्व राजनीति की आर्थिक जड़ों को गंभीरता से समझने के लिए यह असाधारण रूप से मूल्यवान कृति है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एडम टूस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।